اس پروگرام کے اخراجات جوائس مر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
میں آج جو کچھ بتانے کو ہوں اس تعلق سے میں بہت پرجوش ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے یہ پیغام پہلے کبھی نہیں سنایا ہے، بلکہ میں دعا کرتی رہی ہوں کہ آج رات آپ واقعی یہ پیغام سن لیں۔ دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر کچھ سن رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ واقعی یہ سب سن رہے ہیں۔ اس لیے پولوس رسول کہتا ہے کہ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں، اس لیے کہ سچ یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی بات بار 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 سننے کی ضرورت ہے، اور اکثر آپ 25ویں مرتبہ اسے اچانک سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ کر اچانک سے اوہ، یہ آپ کے لیے ایک بالکل نئی چیز ہوتی ہے، لیکن خدا نے یہ آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتا دی ہوتی ہے۔ میں متی 24 باب کی 4 آیت سے آغاز کروں گی، اور اس کا تعلق آخری دور کے نشانات سے ہے۔ میرے خیال ہے اس سے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہر نسل ہی سمجھتی آئی ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ہم پہلی نسلوں سے زیادہ نزدیک آ چکے ہیں، اور سب لوگ ہی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آخری دور کے کیا نشانات ہوں گے۔ اگر آپ متی 24 باب پڑھیں اور دنیا پر نظر دوڑائیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ یقینی طور پر کہیں گے کہ ہم خاتمے کے کافی قریب ہیں۔ یہاں یہ تو نہیں لکھا، لکھا ہے کہ فریب بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ فریب ابلیس کی طرف سے ہے۔ کل رات میں نے کہا تھا کہ فریب کا مطلب ہے کہ جھوٹ پر یقین کرنا، فریب میں آ جانا، جھوٹ کا یقین کر کے فریب میں آ جانا۔ بہت سالوں تک میں نے اس بات کا یقین کیا کہ میں ہر وقت کہتی کہ مجھے کمتر زندگی ملے گی کیونکہ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی تھی۔ میں نے اس بات کا یقین کر لیا کیونکہ اس چیز سے مجھے نقصان ہوا تھا، میری زندگی پر اثر ہوا تھا، اور جو کچھ میں تھی یا جو کچھ میں ہو سکتی تھی وہ سب چھن گیا تھا۔ دیکھیں، یہ ایک جھوٹ تھا، لیکن جب تک میں نے اس کا یقین کیا یہ میری حقیقت رہی۔ لیکن جب مجھے پتا چل گیا کہ خدا مجھے شفا دے گا، اور نہ صرف مجھے شفا دے گا، اور اگر میں اس پر بھروسہ کروں تو جو کھو گیا ہے وہ لوٹا دے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ مجھے لوٹا دے گا جو کچھ میری جوانی میں غلط ہو گیا۔ خدا ہمارا بدلہ دینے والا ہے، لیکن اگر آپ اپنا بدلہ خود ہی لیتے رہیں، سنیں، اگر آپ کوشش کریں کہ اپنا بدلہ خود لیں، تو پھر خدا اس میں شامل نہیں ہوگا اور آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ معاف کرو، بلکہ یہاں تک کہ محبت رکھو اور اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ اس لیے نہیں کہ وہ حقدار ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ آپ کے لیے کرنا آسان ہے، بلکہ خدا کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سنیے، جب خدا کسی کی زندگی میں کام کرتا ہے تو ابلیس راستے سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ خدا جیتے گا۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ آخری زمانہ میں زمین پر فریب ہوگا، اور یہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر خدا اپنے لوگوں کی خاطر وہ دن نہ گھٹاتا تو کوئی انسان بھی، لکھا ہے کہ کوئی انسان بھی اس آنے والے دھوکے سے بچ نہیں سکے گا۔ ہمیں اپنے سر ریت سے نکالنے ہوں گے اور سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، لیکن میں خوف زدہ نہیں ہوں کہ اپنی زندگی گزاروں، کیونکہ میں خدا کے ہاتھ میں ہوں۔ میں ابلیس کے ہاتھ میں نہیں ہوں، میں خدا کے ہاتھوں میں ہوں۔ میں خدا کے ہاتھوں میں ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا کے ساتھ مل کر کیسے کام کروں، کہ ابلیس مجھ پر حملہ نہ کرے بلکہ اسے جیتنے سے روکوں جب وہ میرے خلاف آتا ہے۔ دشمن ہمارے خلاف ایک راستے سے آئے گا اور ہمارے آگے سے 7 راستوں سے بھاگے گا۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ اس کی کیسے مزاحمت کریں، اس لیے پہلی 4 آیت سے آغاز کرتے ہیں، لکھا ہے وہ جاننا چاہتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہوں گی، اور ہمیں کس پر دھیان رکھنا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، خبردار رہو، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ इसलिए आप ये तसव्वुर ना करें कि आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दुनिया में कोई भी शख्स इतना रूहानी नहीं है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए बाइबल में हमें बताया गया है कि हम जागते और दुआ करते रहें और होशियार रहें, दुआ करते रहें कि कोई हमें धोखा ना दे सके, क्योंकि भतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबराना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकई होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। मौजूदा दौर में अब हमें ज्यादातर जिसका सामना है वो कुदरती आफात हैं, जो पहले जमानों की निस्बत ज्यादा हैं। ये मेरा ख्याल है क्योंकि पुराने जमाने में खबर रसानी की सहूलियत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये आफात हमेशा ही आती रही हैं। हमारी मिनिस्ट्री ने गुज़िश्ता चंद सालों में 68 ममालिक में आने वाली कुदरती आफात में लोगों की मदद की है। ह्यूस्टन में साल पहले सैलाब आया और अब वहां दोबारा सैलाब है। काफी बारिश की वजह से एयरपोर्ट्स बंद हैं। वो लोग जिस कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे, फ्लाइट्स मोतली के बाइस ना आ सके। किसी जगह तूफान है, किसी जगह आग है। पिछले साल हम कैलिफोर्निया में थे और हर तरफ आग लगी थी। वहां पर बहुत से लोग थे जो दुख में थे और लोग हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है, खुदा इस वक्त कहां है। एक आयत है जिसमें यूं लिखा है, गुनाह के बढ़ने के बाइस जमीन भी कराहती है और खुदा की मखलसी की राह देखती है। मेरा ख्याल है हमारी जमीन कराहती है, ये चिल्ला रही है, और शायद ज्यादा देर तक। गुनाह के बोझ और बेईमानी के बोझ के नीचे नहीं रह सकती। मैं आपको ये सब बातें सच्चाई से बताऊंगी, अगरचे मैं लाखों लोगों के सामने टीवी के जरिए आती हूं, मैं इस तरीके से हर वक्त दुनिया के सामने आती हूं। इसके बावजूद मैं तन्हाई में काफी वक्त गुजारती हूं। शायद ये अजीब लगे, लेकिन ये ऐसा ही है। जब मैं खिदमत में लोगों से बात करती हूं जो कि बाहर दुनिया में लोगों के पास जाते हैं और मुझसे ज्यादा आवाम में जाकर काम करते हैं, मैं सच्चाई से कहूंगी कि मुझे हमेशा ही ये महसूस होता है कि मुझे अपने काम पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं महसूस करती हूँ कि खुदा चाहता है कि मैं इसी राह पर रहूं जो उसने मुझे दी है, और ये काम अच्छा चल रहा है, और मैं इसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगी। क्योंकि अक्सर जब आप बाहर जाते हैं, बहुत सी चीजों में शामिल होते हैं, यानी जब तक आप बहुत मजबूत ना हो और बहुत से लोग हैं भी, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि ऐसी चीजों में उलझ जाएं जिनका कोई जवाब नहीं बनता। और मैं बहुत सी ऐसी बातें सुनती हूं जो बहुत ही अहमकाना सी हैं। सच कहूंगी, ये सब कुछ बहुत नागवार होता है। मुझे किसी ने बताया, बल्कि ऑनलाइन लोगों का ग्रुप दिखाया जो कि किसी वक्त बहुत मजबूत मसीही थे और अब पौधों के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। मैं सोचती हूं कि ओ, मुझे मालूम है कि बात बहुत मुश्किल में डालेगी, लेकिन किसी को बताना ही है कि खुद को ठीक करें। खुदा ने पौधे बनाए, पौधे हरगिज गुनाह माफ नहीं कर सकते। मेरे लिए ये चीज बहुत मजे का केस है, और मैं सोचती हूँ कि कोई इन सब पर कैसे यकीन कर सकता है। इसलिए हमें सच्चाई की मुनादी करते रहने की जरूरत है, और इसमें नरम और लुभाने वाली बातें ना हो, और ना ही इसे इतना मीठा बनाएं कि सब लोग उसे आसानी से हजम कर लें। अगर आप सोचते हैं कि मैं अक्सर सख्त हो जाती हूँ, तो आपको यीशु का ये पैगाम सुनना चाहिए। ऐ सांपों, अफई के बच्चों, ऐ रियाकारों, उन्हें कहा सफेदी फिरी कब्रों, मैं तो काफी नरमी से बात करती हूँ। मैं अक्सर औकात ही खुदा की साख की हिफाजत करती हूं। एक दफा मैं क्रिस्टिन केन के साथ शॉपिंग कर रही थी और हम एक स्टोर में कुछ देखने गए। बताया कि हम कुछ देख रहे हैं। वो बोली, आप लोग क्या करने आए हैं? हमने कहा, हम खादिम हैं और एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो बोली, हाँ मैं भी रूहानी हूँ। इस तरह का दावा मुझे होशियार कर देता है कि मैं रूहानी हूँ। उसने ये नहीं कहा कि वो मसीही है, बल्कि कहा कि मैं रूहानी हूँ। हम कुछ बातचीत करते रहे। वो कभी कभी बातों के दरमियान गाली भी निकाल देती और कहती, माफी चाहती हूं। उसने कहा, मेरा ख्याल है कि खुदा भी बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करता है। और फिर मेरे अंदर जोश उभरा कि खुदा का तहफुज करूं। मैं काउंटर पर झुकी और कहा, सुनो, खुदा कभी भी सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं करता। और क्रिस्टीन ने उसी वक्त आगे बढ़कर कहा, लेकिन वो उनसे प्यार करता है जो निकालते हैं। बाद में खुदा ने मुझसे कहा, तुम मछली को उस वक्त साफ करने की कोशिश कर रही थी जब वो अभी पकड़ी भी नहीं गई थी। आप जानते हैं कि वो एक मुबशिर का दिल रखती है। वो उस लड़की को बचाना चाहती थी, जबकि मैं एक उस्ताद हूँ और रूहानी पुख्तगी चाहती हूँ। मैंने उसे दुरुस्त करने की कोशिश की। लेकिन दुनिया में बहुत अजीब किस्म की चीजें हैं, खुदा रहम करे। उस वक्त तुमको ईजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे। हम जानते हैं कि मसीह इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला ग्रोह है। अब ये अमेरिका में भी शुरू है। और आप जानते हैं, हमारा मुल्क अमेरिका भी इसी बुनियाद पर बना, ताकि लोग मजहबी आजादी रखें। और अब यहां पर हर मजहब को आजादी है सिवाय मसीहियत के। और बेहतर है कि हम अपने हक के लिए लड़ें दुरुस्त तरीके से, यानी तशद्दुद के बगैर, लेकिन दुरुस्त तरीके से, वरना हम आजादी खो देंगे। उस वक्त लोग तुमको ईजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे, जो कि आजकल हो रहा है, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और करें धोखा देंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे। इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा फिक्रमंद कर दिया है। इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा, नफरत और तफरीका और अदालत और तनकीद और ऐब जोई, माफ ना करना और कड़वाहट और नाराजगी है। इसलिए क्लीसिया के पास कुवत नहीं है। मसा उस जगह रहता है जहां इत्मीनान और यगानगत हो। हमारे पास कुछ नहीं। अगर हमारे पास खुदा का मसा नहीं, और आप में से कुछ को शायद मालूम नहीं कि ये क्या है, खुदा का मसा बहुत ज्यादा कीमती है। ये उसकी कुवत है, ये उसकी आपकी जिंदगी में हुजूरी है। बाइबल कहती है, अगर आपके पास मसा है तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। ये उस्ताद की खिदमत के ताल्लुक से बात नहीं है, जैसे कि मैं उस्ताद हूं। ये मसीह के बदन में एक नेमत है, बल्कि इसका मतलब है कि कोई आपको हर वक्त ये बताए कि आपको क्या करना है, क्योंकि खुदा की हुजूरी आपकी जिंदगी में है, जो आपकी रहनुमाई करेगा कि दाएं मुड़ना है या बाएं, हाँ कहना है या मना करना है। आपको खुदा के मसा की जरूरत है। सिर्फ मनादी के लिए नहीं, बल्कि उसके मसा की जरूरत है कि बच्चों की परवरिश कैसे करें, काम कैसे करें, ताकि इत्मीनान की हालत में वापस आए। मैं ये बात सादा अल्फाज में कहूंगी, ये मुमकिन नहीं कि एक ही वक्त में आपके पास मसा भी हो और किसी से नफरत भी करें। मैं जानती हूं कि दूसरों को माफ करने के ताल्लुक से ये आपका पहला पैगाम नहीं है। मैं आज सिर्फ इसी पर बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप अभी तक लोगों से नाराज हैं और इसी हालत में रहते हैं, तो फिर आपको अभी ये पैगाम सुनने की जरूरत है, क्योंकि आपको अभी ये समझ नहीं आया है। जानते हैं कि हम सब यही कहते हैं कि आपको नहीं मालूम कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि जज्बात मजरूह हैं। यकीनन आपका दुख अहमियत रखता है और जो कुछ आपके साथ हुआ वो अहम है। लेकिन अगर यीशु हमारे लिए कर सकता है, यानी हमारे लिए मर गया जब हमें उसकी परवाह भी ना थी। सुने, मुझे ऐसी नजरों से ना देखें कि आप नहीं जानते कि मैं क्या कह रही हूं। किसी ने मेरे साथ इतना बुरा नहीं किया जितना मैंने खुदा के साथ किया। लेकिन उसने मुझे माफ किया और बार बार माफ किया। जो कुछ भी वो हमें देता है तो वो हमसे तवक्को करता है कि हम दूसरों को दें। ये आपकी चीज नहीं है, यकीन करें। अगर आप मेरा यकीन करें, मैं बताना चाहूंगी। मेरा यकीन है कि तमाम मसाइल में ये सबसे बड़ा मसला है जो हमारी दुनिया में आज मौजूद है। ये सब नफरत और गुस्सा, ये सब कुछ बहुत ही बुरा है। ये वाकई बहुत बुरी चीज है। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और वजह उनकी जिल्द की रंगत है। एक दूसरे से नफरत करते हैं और क्लीसियाई फर्क की वजह से एक दूसरे से नफरत करते हैं। अक्सर बगैर किसी वजह के भी नफरत करते हैं। मतलब ये है कि लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं और वो नहीं जानते कि इस ताल्लुक से क्या करें, इसलिए वो बस दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। लेकिन आपको उसकी मजाहमत करना है, इस चीज से दूर रहना है, आपको होशियार रहना है। क्योंकि हर मर्तबा जब आपके जज्बात मजरू होते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो आप इबलीस के हाथ में खिलौना है हर मर्तबा। दूसरा करंथियों, दूसरा बाब, मेरे ख्याल के 10 या 11 है। क्योंकि जो कुछ मैंने माफ किया, अगर किया तो मसीह का काई मकाम होकर तुम्हारी खातिर माफ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले। आप इसलिए माफ नहीं करते कि आपके लिए आसान है, बल्कि इसलिए कि आप इबलीस को अपनी जिंदगी में कोई रास्ता देना नहीं चाहते। मैंने आने से पहले ये दुआ की थी कि खुदावंद मेहरबानी से लोग ये बात सुन लें जो आज मैं कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप वाकई ये जान लें। मैं चाहती हूँ कि आप इस कदर जान लें कि आप घर जाकर जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई शख्स इस कॉन्फ्रेंस में किसी से नाराजगी की हालत में जाए। क्या आपके पास ईमान का कोई एक कतरा है? मैं नहीं जानती। मतलब माजरत चाहूंगी, लेकिन मैं आपको आज मीठा और लजीज निवाला नहीं दूंगी। अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो किसी और जगह जाएं, क्योंकि हम यहाँ गोश्त और सब्जियां खा रहे हैं। अब इस हिस्से की तरफ आते हैं जो मुझे पसंद है, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। और 12वीं आयत में लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। अब गौर करें, यह दुनिया के आखिर का एक निशान है कि बहुत से लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ रही है। ये लोग बढ़ती हुई बदी में फंस गए हैं जो पूरी दुनिया में हो रही है और जो दुनिया के मसाइल हैं। इसलिए हम सभी गुस्से में हैं, खुदा से नाराज हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और ऐसी बातें। अब हमें ये करना है कि ये जान लें कि ये इबलीस है, इबलीस का काम है। क्या कोई कहेगा कि ये इबलीस का काम है? ऐसा है। और जान लें कि मोहब्बत रूहानी जंग की आला तरीन शक्ल है। सुने, मेहरबानी से जान लें, हम सीख रहे हैं कि इबलीस को किस तरह शिकस्त दें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इबलीस पर गालिब आने का एक ही तरीका है, और वो ये कि हम सब लोगों से भलाई करते जाएं, लोगों से प्यार करें, उन्हें दें, उनकी मदद करें, खिदमत करें। अगर मैं आपके चेहरे के तासुरात से जानने की कोशिश करूं कि क्या आप ये बात समझ गए हैं, तो मैं यहां आज मुश्किल में हूं। मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो मेरे साथ मुत्तफिक हैं। और शायद मैं स्टेज से उतरकर नीचे आऊं और कहना शुरू कर दूं कि हमें बदलने की जरूरत है, हमें अपनी जात से नजरें हटाने की जरूरत है। सिर्फ अपनी दुनिया में ही मगन ना रहें। बाइबल क्या कहती है? अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ और अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी जात से नजर हटाओ और अपने तमाम मफादात से, और अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे आओ। आप सोचते हैं फिर मेरे साथ क्या होगा? मैं बताती हूँ कि आपके साथ क्या होगा। अगर अपनी खुदी का इनकार करें और खुदा की खिदमत करें, यानी लोगों की खिदमत करें, तो खुदा पिछले दरवाजे से आएगा और आपका ख्याल रखेगा और आपके लिए वो कुछ कर देगा जो आप खुद से नहीं कर सकते थे। आगे बढ़े, मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि खुदा को आजमाएं और देखें कि वो कर सकता है या नहीं कि आपका बेहतरीन ख्याल रखे जो आप खुद अपनी जात के लिए भी नहीं कर सकते हैं। सुने, मैंने बहुत जिंदगी गुजार ली है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी जात में गुम थी और मैं पुरजोश हो गई जब मुझे ईमान के बारे में पता चल गया, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि मैं अपने ईमान से जो चाहूं हासिल कर सकती हूं, लेकिन खुदा ने कहा मैंने तुम्हें सिखाया है कि ईमान क्या है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे चाहता हूं। ये तुम्हारे लिए नहीं है कि सब कुछ हासिल कर लो जो तुम चाहती हो। सुने, आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है देने से, खिदमत करने से, लोगों के लिए कुछ करने से। मैं ना खुश थी। अगर मेरी मिनिस्ट्री बढ़ेगी तो शायद खुश रहूं, जब ये बढ़ गई तो फिर भी ना खुश थी। मैं खुश नहीं थी, अंदर ना खुशी थी। फिर खुदा से कहा कि मैं ये तमाम काम 20 साल से कर रही हूं, लेकिन अब भी ना खुश हूं, और खुदा ने मुझे जवाब दिया और कहा क्योंकि तुम खुदगर्ज हो। सोच रही हूं कि कोई और भी यहां है जिसे ये सुनने की जरूरत है, शायद आपने ये दुआ की। मेरा क्या होगा। लेकिन क्रिस्टीन ने आज एक दिलचस्प बात मुझसे कही जब हम इस ताल्लुक से बात कर रहे थे कि शायद मुझे बताने की जरूरत है कि मोहब्बत आखिर क्या है। क्योंकि हम कहते हैं मुझे आइसक्रीम से प्यार है, मुझे अपनी बिल्ली से प्यार है, मुझे फला फिल्म से प्यार है, हमें अपने घर से प्यार है, हमें खुदा से प्यार है, लोगों से प्यार है। आपको आइसक्रीम से प्यार नहीं, आप सिर्फ उसे पसंद करते हैं इसलिए कि उसका जायका शायद आपको पसंद है, लेकिन हम उससे प्यार नहीं करते। मेरा ख्याल है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि मोहब्बत असल में है क्या। मोहब्बत ऐसी चीज है जो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये आपको छूती है और ये लोगों को भी छू लेती है। ये जिंदगियों को बदल सकती है, आपको बदल सकती है, ये लोगों को बदल सकती है जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप मसीही हैं तो आपका पहले ही से ख्याल रखा जा रहा है, आप आसमान के सफर पर हैं। गौर से सुनिए इस गर्ज और मकसद से कि आपके लिए सब कुछ हो चुका है, आपका नाम किताबे हयात में है, आपका घर तैयार हो रहा है, आप यहां किसी मकसद के लिए हैं, और ये मकसद खुद को खुश करना हरगिज नहीं, इसलिए अपनी रोशनी चमकने दें, नमक बने, अपनी रोशनी चमकने दें, अपनी जिंदगी से दूसरों में उसकी तड़प पैदा करें, किसी के अंधेरे में आप रोशनी बन जाएं, अपनी जात से नजरें हटाएं, तो मैं आपको बता दूं कि फिर खुदा आपके लिए 5 मिनट में वो कर देगा जो शायद आप अपने लिए सारी जिंदगी में नहीं कर सकते, और आप किस कदर खुश होंगे कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग यकीन करते हैं कि हम आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, जिसका यीशु ने बाइबल में जिक्र किया है। कलाम में लिखा है कि इस दौर में दूसरों के लिए मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन हम इस पर गालिब आ सकते हैं सिर्फ किसी के लिए कुछ अच्छा करें। हर रोज जब हम हकीकी मोहब्बत में चलेंगे तो उसकी हकीकी खुशी का तजर्बा करेंगे।